आप सुन रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां बाय इस्मत चुगताई, मेरी यानी सुरभि की आवाज में। और आज की कहानी है कच्चे धागे। आज गांधी जयंती है। शहर में कितनी चहल पहल है। फूलों और तिरंगे झंडों से अरास्ता पैरास्ता मार्टरें अपनी आगोश में नौदौलतीय सेठों को दबाए फर्राटे भर रही हैं। बर्फ जैसी सफेद खद्दर में ये आबनूस पुतले काले सफेद का चितकबरा मिलाप आंखों पर कैसी तकलीफ दे चोट करता है। और उनके पहलू में बैठी हुई बदजौक सेठानियां और गुल मचाते हुए बच्चे सोने पर सुहागा का काम कर रहे हैं। दौलत बिना कहे सुने उन पर टूट पड़ी है। मालूम होता है कपड़े पहने हुए नहीं है, बल्कि बहुत से बेहगम थान किसी ने उलझा कर मोटर में ठोस दिए हैं। सामाने आराइश रंगों पाउडर अलमारियों से कूदकर उन पर आन पड़ा है। नाक बहते तेल में चिपचिपाते बच्चे वाइट अवे की अल्ट्रा मॉडर्न फ्राकों के साथ झांझन कड़े पहने आंखों में मनो काजल उड़ेले अजीब महज का खेल हुयुला बने हुए हैं। हाथों में तिरंगे झंडे हैं और अमरीकन खिलौने। ऐसा मालूम होता है किसी सस्ते सर्कस का इश्तिहार चला जा रहा हो। आज बापू का जन्मदिन है। आज भारत के सपूत ने भारत के निवासियों को गुलामी से आजाद कराने के लिए धरती पर पहला सांस लिया था। मगर परेल और लालबाग की चालों में ये कैसी मुर्दनी छाई हुई है, जिसे आज उनका कोई न पैदा हुआ हो बल्कि हजारों मौतें हो गई हों, लाखों उम्मीदों धुआं बन गई हों। उनके चेहरे की रौनक कहाँ गायब हो गई है? क्या ये कभी वापस ना आएगी? उनके कपड़ों में रंग क्यों नहीं? तिलिये की चमक क्यों नहीं? उनके हाथों में तिरंगे गुब्बारे क्यों नहीं? बापू तो जनता के थे, फिर ये चोर बाजारियों के हत्थे क्यों चढ़ गए? जैसे पुराने जमाने के देवताओं को छीन लिया था, ऐसे उन्हें भी लोग उड़ा ले गए और शोकेस में सजा दिया, तिजोरियों पर मढ़ दिया, लेन देन की तराजू के पलड़े में पटकरे बनाकर डाल दिया है, उन्हें मिठाई और बिस्किट के डिब्बों पर चिपका दिया है। उनका नाम लेकर चंदे जमा करते हैं, उनका नाम लेकर हड़तालें तोड़ते हैं, उन्हीं का नाम लेकर कंट्रोल बंटवाते हैं और काले बाजार को सींचते हैं। उनके बिना कोई धंधा नहीं चलता, मानो तुरुप का इक्का हाथ आ गया है, हर दाव पर वही लगा देते हैं। अब शायद उन्हीं के नाम पर अहिंसा के उसूलों पर तीसरी जंग का खून छिड़का जाएगा। आज अहिंसावादी उनकी याद में आत्मा को शुद्ध करने के लिए सूत कात रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, चोटी के अफसर, मिलों के मालिक, सट्टे और चोर बाजारों के व्यापारी एक महास पर आ खड़े होकर आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। 2 साल के अरसे में कितनी आत्माएं नापाक हो चुकी हैं। उनके लिए इस सूत के ताने बाने से एक सायबान बुना जाएगा, जिसके छांव में वो निश्चिंत बैठकर फलते फूलते रहेंगे। मेरे मामूजान भी अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर नीमत दराज सुबह से तकली नचा रहे हैं। उनके चेहरे पर कैसा मुकद्दस अज़्म छाया हुआ है, जानो पुल सरात बुन रहे हों जिस पर चलकर उन्हें स्वर्ग जाना है। न जाने वो इस कच्चे सूत के फंदे से क्या कुछ फांस लेने की तिकड़म लगा रहे हैं। कभी वो ब्रिटिश सरकार के फर्जदे दिलबंद रह चुके थे, लेकिन च्यूटी की तरह तूफान की खबर पाकर जल्दी से नमक के सत्याग्रह में कूद पड़े और नमक बनाने लगे। जब वो यूं गुमराह हुए तो उनके वालिद साहब ने उन्हें आंख नहीं दिया, बल्कि उनकी दानी शवरी की दाद दी। वो खुद सरकार से वाबस्ता रहे, मगर उनका बेटा बागी हो गया। जभी तो आज वो देसी सरकार की नाक का बाल बने हुए हैं। 20 साल महकमाए तालीम की इसलाह करने के बाद वो अब कम्युनिस्टों को मारो वाली स्कीम में बड़ी शदोमत से हिस्सा लेने में काबिल हो गए हैं। तकली नचाते जाते हैं और सोच रहे हैं, भंगियों की हड़ताल तालिब इल्मों की मदद से ना टूट सकी, ये वार खाली हो गया। अब तालिब इल्मों की हड़तालें किसकी मदद से तुड़वाई जाएं? ताली बजाने के लिए 2 हाथों का होना जरूरी है, सर लड़ाने के लिए 2 सरों का होना जरूरी है। क्या तालिब इल्मों के 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते? मामू जान जहर का तोड़ जहर से ही करते हैं, इसलिए तालिब इल्मों की एक सही नुमाइंदा जमात की पैदावार में मुनहकिम है, जो जी तोड़ कर कौमी गीत गाए, फीस बढ़ाने पर सरकार की बेपनाह मेहरबानी का शुक्रिया अदा करे और कम्युनिस्टों के बहकावे में आकर सरकार का तख्ता ना उल्टे, फिर हड़तालें बंद हो जाएंगी। इधर तकली नाच रही है, उधर वजीर आजम परदेसियों से नाता जोड़ाए हैं। वहाँ से तोहफा लाएंगे जिसकी मदद से भूख के साथ साथ भूखों का भी सफाया हो जाएगा। उधर मेरे नाना जान उन्हें रश्क आमेज नजरों से तक रहे हैं। वह सुबह से बैठे जूझ रहे हैं पर तकली उनके तकिए से बल निकाले दे रही है। रुई का टुकड़ा पसीने में डूबकर चूहे की शक्ल का हो गया है। तीन तकली बदल चुके हैं पर हर नई तकली उन्हें नया नाच नचा रही है। वो उकड़ू भी बैठे, पालते भी मारी, दो जानू हुए, फिर मामू जान की तरह नीम दराज भी हो गए, मगर उनकी तरह निरत भाव ना जमा सके। कोई तकली भी मामू जान की तकली वाला भर्राटा नहीं भर पाई। वो झुंझलाते हैं तब मामू जान मुस्कुराते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो, किबला रियाज की जरूरत है, रियाज की। ये मर्तबा यो बिला तपस्या किए हाथ नहीं लग जाया करता। जिहाद के लिए तलवार पकड़ने की आरजूमंद उंगलियां भला तकली को पकड़ना क्या जाने। आप तोप तफंग के आदि ठहरे, ये रूहानी तलवार यानी तकली घुमाना क्या जाने। मेरे नाना जान इनकी आंखों की बातचीत समझने के ऐसे आदि हो चुके हैं कि फौरन उनके घुटने लरजने लगते हैं। वैसे ही उनकी घबराहटें माले खोलिया की हदों को छू रही हैं। जब से सुना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह उनकी तिजारत खंडत में पड़ने वाली है, बिल्कुल ही हवास फाकता होकर रह गए हैं। उनका एक पैर हिंदुस्तान में है तो दूसरा पाकिस्तान में। यहाँ अकलियतों के हफूक की हिफाजत का वास्ता देते हैं तो वहाँ इस्लाम की दुहाई। पर ऐसा मालूम होता है नाना जान की चीखों पुकार में कोई दम नहीं रहा। दोनों मालिक एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं और उनके साथ मेरे नाना जान के दोनों पैरों के दरमियान का फासला खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। बीच में से चिर जाने का कारब उनकी रग रग में रच गया है। दुख और खौफ से पथराई हुई आंखें वो गांधी जी के उसी मुजस्मे की तरफ फेर देते हैं जो बंगाल के बीचों बीच नसब है, और हर आने जाने वाले को जताकर नाना जान वहाँ रोज फूल चढ़ाकर दंडवत करते हैं। मामू जान पर उन्हें रश्क नहीं आता, अब तो जादूगरी का भी शुबहा होने लगा है। वो कैसे दिलेरी से बैठकर अफसरों के बीच में वजीर आजम पर छींटेबाजी शुरू कर देते हैं। उनके बौखलाने और एकदम फिरने के किस्से सुन सुनाकर क्या मजे से कह कहे लगाते हैं और लगवाते हैं। कांग्रेसी महादेवियों का तो बिल्कुल घर की बड़ी बूढ़ियों की तरह जिक्र करते हैं, तो बिल्कुल गधा है। एक महादेवी ने एक बार मेरे मामू जान से कहा था और उस वक्त उन्हें अपनी खुशनसीबी पर फक्र हुआ था और आंखों में मारे अधिकत के आंसू उबल आए थे। अब भी बाज मौकों पर जब वो किस्सा सुनाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू उबल आते हैं। नाना जान इस रूहानी रिश्ते की माता बर्रक लताफत पर झूम झूम उठते हैं और दुख से तिलमिला जाते हैं। काश उन्हें भी किसी ने प्यार से गधा या कुत्ता कहा होता तो आज कितनी भी जहमतों से बच गए होते। मगर एक बार कायदे आजम के जुलूस का ऊंट बनने के बाद किसी और अस्तबल में तो उनके लिए जगह ही नहीं, और आज बापू की जयंती के मौके पर तकली के नखरे बड़े खल रहे हैं। वो सूत कातते जा रहे हैं और उसमें मोटी मोटी गालियां पिरोते जा रहे हैं, मगर वो जानते हैं ये अड़ियल सूत उनसे शर्त बांध कर मुकाबला कर रहा है। मरोड़ियों देते देते उनकी उंगलियां थक चुकी हैं, पोरे सहला रहे हैं, मगर सूत मजाल है कि दो इंच से आगे खिसक जाए। जभी तो वो उसमें मुगल जात की गर्मी जोड़ते जाते हैं। ये सूद वो ईद उल जुहा के मौके पर वजीर आजम की गर्दन में माला बनाकर हिमालय करना चाहते हैं। बड़ी काविशों से उन्होंने मुसलमान मोहल्लों में लोगों के ऊंच नीच दिखाकर वजीर साहब को मदऊ करने का इंतजाम किया है। जब कभी तार टूटता है तो उनका दिल चाहता है कि एकदम हज को चले जाएं और वहाँ दरे हुजूर पर बैठकर आंखें बंद करके एक मुस्तकिल मराकिब में चले जाएं। मगर एकदम उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैले हुए कारोबार का ख्याल उसे मराकिब में चौंका देता है और वे सहम कर चारों तरफ देखने लगते हैं कि कहीं मामू जान का कोई छठा सातवां एहसास उनके दिल की चोट ना पकड़ ले, नहीं तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। अपने बरामदे में बैठे हुए रोड़ी मलजी की तकली भी कुछ ताल सुर से नहीं नाच रही है। चकरियां लेते लेते एकदम से तोड़े लेने लगती है और फिर त्योरा कर तार भी तोड़ देती है, मगर रेड़ी मलजी हिम्मत नहीं हारते। मुल्क में बड़ी अफरा तफरी पड़ी है, जिधर देखो बेईमानी धोखेबाजी, बापों की तालीम को भूलकर सब लूट खसोट पर तुले हुए हैं। ऐसे में भी कोई ईमानदारी का व्यापार करे तो कैसे करे? ईमानदारी चलेगी कितने दिन? खुले बाजार में धरा ही क्या है? माल को बाजार नहीं मिलता, बाजार को ग्राहक नहीं मिलता। जब माल कोठों में पड़ा सड़ रहा है तो मजदूरों को मजदूरी कहाँ से दे? नेता कहते हैं माल की पैदावार बढ़ाओ, सो बढ़ गई। अब नेता ये नहीं कहते कि ग्राहकों की पैदावार कैसे बढ़ाएं। काश खुद एक उगाओ का नारा मारने के बजाय खरीदार उगाओ की स्कीम चला सकते, मगर खरीदार का बीज सिवाय अमेरिका के कहीं नहीं पैदा होता। अमेरिका ने तो क्या मजे से सारे मुल्कों में डॉलर बोकर खरीदारों के खलिहान कायम कर दिए हैं। पुरानी सब बातों की जिम्मेदार आत्मा की गंदगी ही तो है, चरखा ही तो भारत का एटम बम है। सूत काट काट कर अंग्रेजों का उत्तू कर दिया, तो इन छोटी छोटी बातों की तो क्या ही हकीकत है। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी फिर यही सूत का जाल समुद्र में मछलियों की तरह अनगिनत गाहक पकड़ लाएगा। यही कच्चे धागे उस देव को भी बूंद बूंद जकड़ डालेंगे जो करवट लेकर चौंक रहा है। सब दुख दूर हो जाएंगे। जनान खाने में मुमानी भी बैठी तकली को मत कर अपने जीवन का अमृत निचोड़ने में जुटी हुई है। बावजूद कोशिशों के वो खद्दर नहीं बुन सकी। उनका इतलस और किमखाब के आगोश में चलने वाला जिस्म खद्दर के घस्से ना सहार सकता और हमेशा फबद उठता। गर्मी, दाने, फुंसियां और फिर फोड़े बन जाते। ये दवाइयों के पहाड़ देश सेविका को मरहम का चिपचिपाता हुआ फाया बना देते। कुछ दिन तक तो मामू जान ने उनके जिस्म की जमींदारी ठसुओं को ना गर्दाना, मगर जब डॉक्टरों ने मरीजा को सिवाय बारीक मलमल के दवा में डूबे हुए फायों के जमा सतर पोशी से ही मना कर दिया, तो वो मजबूरन इन शुद्धियों से बाज आ गए। वैसे भी टिंचर और आइडो फार्म के हमले झेलने की हिम्मत नहीं रही थी। इससे वो उन्हें तीसरे दर्जे का नेशनलिस्ट समझते और ऐसे हिकारत से देखते थे जैसे एक पहुंचा हुआ पीर मुर्शीद किसी नौसिखियों को देखता है। मुमानी भी तकली घुमा रही है, मगर उनकी उंगलियां लरज रही हैं। इन नाजुक तारों में उनके जज्बात की हलचल को सहारने की सकत नहीं, क्योंकि मिस राज की उंगलियां भी तो काबू में नहीं। मामूजान के घर के सारे साजो सामान की तरह आज उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी शुद्ध होने का पुख्ता इरादा करके मामूजान से तकली चलाना सीख रही है। मिसराज की उम्र का बहुतेरा हिस्सा यतीम खाने में गुजरा, जहां वो ईसा मसीह के सलीब के सामने खुदा की बरकत की हम्द गाती रही। खुरदुरे बदरंग कपड़े पहनकर और नाकिस खाने खाकर उसने खुदा की इनायत की दाद दी। यतीम खाने से निकलकर वो सीधी फौज के दफ्तर पहुंच गई। जंग के ये चंद पुरबहाल साल उसकी जिंदगी में रोशन सितारों की तरह हमेशा दरख्शा रहेंगे। वो सैर सपाटे, वो रक्स और मर्दों के झमघटे, सफेद चमड़ी वाले आशिकों के नरगे, जवान लड़कियों की कमी जिसने कुंवारियों को भी पापड़ बना दिया था, और वो एक खस्ता पापड़ की तरह एक जबड़े से दूसरे जबड़े में मुंतकिल होती गई। अंग्रेज सार्जेंट के हाथ से जब ज्यादा अलाउंस पाने वाले अमरीकन सार्जेंट ने इसे जीत लिया तो वो घंटों आईनों में अपनी चौड़ी नाक के हुस्न तलाश करती रही। फिर एकदम जैसे किसी ने उसे झिंझोड़ कर जगा दिया, जंग खत्म हो गई। गोरे सोल्जर एक एक कर रुखसत होने लगे और वो एक लट्टू की तरह उनके इर्द गिर्द भिन्नाती सी एक से दूसरी बाह में मुंतकिल होती गई, यहाँ तक कि उसके बाजू खाली फिजा में फड़फड़ाते रह गए। उसके साथ वालियों ने जंग के जमाने में कितना कुछ जमा कर लिया। ये सफेद सिपाही बड़े दिल फेंक और साथ साथ दौलत फेंक भी होते हैं। जाते वक्त वो अपनी महबूबाओं को क्या कुछ ना दे गए, जिसमें से कुछ कबाड़ खानों की नजर हुआ, कुछ अस्पतालों और यतीम खानों में पहुंच गया। जंग खत्म हुई तो मिस राज और उनके ग्रुप वाली लड़कियों की जंग शुरू हुई और उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो कितनी बदसूरत और बेमसर्रफ है। दौराने जंग में उन्होंने जो कुछ हुनर सीखे वो अमन के जमाने में काम नहीं दे सके। जिंदगी के इस अंधाधुन चक्कर ने आज इसे तकली पकड़ा दी है। मामू जान एक साबिर माहिर नफ्सियात है, फिर भी कई बार झुंझला कर मिसराज की तहलील नफसी कर चुके हैं। वो मुख्तलिफ मगरबी मोहरीन नफ्सियात के अकवाले जरी के जरिए ये साबित कर चुके हैं कि मिसराज के तहत अला शऊर में कोई चुभन है जो तार को बार बार खटकी लगा देती है। मुमानी भी खूब जानती है कि ये तहत अला शऊर की चुभन क्या बला है, मगर उनकी तहसील नफसी निहायत फूहड़पने की बरजनी है, जिसका इजहार करने की ताकत वो अरसा हुआ खो चुकी है। अगले वक्तों के लोग खुले बंदों रंडी के कोठे पर चढ़ते थे, आज उनके सपूत शऊर और तलाशऊर की चिलमन डालकर वही कुछ कर लेते हैं। मगर वो इतना जानती हैं कि मिसराज भी उनसे कम मजबूर नहीं, जीने का ख्याल छोड़कर सारी उम्र मिसराज इसी तरह अधेड़ उम्र के माहरीने नफसियात की जहनी ठोकरों में रुलती रहेगी, इनके लाशऊर हाथों का खिलौना बनती रहेगी। हर कह कहे पर तार टूटता है तो झल्लाकर चौंक पड़ती हैं। उनका अफगानी नस्ल का खून खौल उठता है, दोनों हाथों से तकली भींचने लगती हैं, जैसे किसी का गला घोट रही हैं। मगर दूसरे लम्हे अहिंसा के साए में पली हुई शेरनी दुबक कर सूत जोड़ लेती है और एक मोहूम सहारे पर आगे चल पड़ती है। वो अपनी सारी बदनसीबी को औलाद ना होने पर महमूल करती है। अगर आज उनकी गोद में इन छह लड़कियों के बजाय एक घी का लड्डू हुमकता होता तो मियाँ की मजाल ना थी कि उनके सीने पर यो दिमागी सूते चढ़ाते। मगर लड़के का बीज सदा बेकार गया। खुदा एक माँ का भी होता वो उसे बेटियों की ही सफ में खड़ा करके मातम करती। वो एक मर्द के हाथ के मैल पर पली थी, अब भी एक शरीफ मर्द ही उनका काफिल है। फिर जब ये मर्द मरोड़ा दे देता है तो उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अगर वो खुद एक सहारा बन सकती हैं, तो फिर बुढ़ापा तीर हो जाता। मगर मामू जान कहते हैं ये भी उनका खानदानी कसूर है। अमूमन नवाबों जागीरदारों के यहाँ औलादे नरीन नहीं पैदा होती और इसका भुगतान वो भी भुगत रहे हैं, वरना खुद इनके जिस्म में तो नर बनाने का काफी मादा है। कौन जाने किस तकली ने स्वराज दिया, क्या वह उन्हें एक बेटा नहीं दे सकती। एकदम उनके चेहरे के खंडहर जाग उठते हैं, डरावनी मुस्कुराहट एक नई करवट बदल कर अंगड़ाई लेती है। तकली नाच रही है और वो मुस्कुरा रही है। इस कच्चे धागे को वो इकलौते बेटे की तरह परवान चढ़ते देख रही है। एक सूत फिर दूसरा तीसरा और चौथा, सारे मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाएगी, मिसराज के गले को घोटती चली जाएगी जिसने उनका जीवन अमृत चुरा लिया है। यो आज बापू की जयंती के रोज आत्माएं शुद्ध हो रही हैं, गंदी और घिनौनी आत्माएं। मगर लाल बाग और परेल के इलाकों में एक भी तकली नाचती नजर नहीं आती। किसी को आत्मा को पाक करने की फिक्र नहीं। इस छीन झपट इस मुनाफा खोरी और इश्तेहारबाजी के चौराहे पर दूर कामगार मैदान में बम्बई के मेहनतकश अमन कॉन्फ्रेंस के पहले इजलास के मौके पर जिंदगी के नए प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ बाशऊर मेहनतकश तबके की रहनुमाई में छटनी की धार से जख्मी मजदूर, फीसों के बार में कुचले हुए तालिब इल्म और कम तनख्वाह और महंगाई के मारे कारक और मुअल्लिम तीसरी जंग के खिलाफ अमन का अज्म लेकर जमा होते हैं। 25,000 जाने एक कल्ब होकर उम्मीद भरी नजरों से आजाद मुल्क के रहनुमाओं की तस्वीरों को तक रही हैं, अपने दिलों की आवाज अपने साथियों के मुंह से सुन रही हैं। तीसरी जंग ना होती, इंसान इंसान से नहीं इस बार हैवान से लड़ेगा, काले बाजार से जंग करेगा, डॉलर के गुलामों का मुकाबला करेगा। कौन कहता है ये निहत्ते हैं, इनके हाथों में बड़े खौफनाक हथियार हैं, जिनके तखयुल से ही सल्तनतें लरज रही हैं, एटम बम कांप रहे हैं और डॉलर के पुल टूट रहे हैं। ये नजर न आने वाला 25,000 फौलादी तारों की ऐसी रस्सी बट रहे हैं जो सारी फाचिस्ट कुवतों का गला घोट डालेगी। जभी तो कामगार मैदानों के चारों तरफ पुलिस का पहरा है, CID का चक्कर है, जरखरी डंडे मंडला रहे हैं। नाजायज शराब पर पहरा नहीं, काले बाजार पर पहरा नहीं, चोर उचक्कों पर पहरा नहीं, रिश्वत सतानी और अस्मत फरोशी का पहरा नहीं। दुनिया भर की गलाजतें फल फूल रही हैं, मगर अमन चाहने वालों पर पहरा है। मौत बेलगाम तराने भर रही है और जिंदगी के लबों पर ताला है। सड़ते हुए गुनाह के सिर पर कानून की छाव है, शादाब इंसानियत के सिर पर शैतानी आग। आज मैं इस मजमे के दरमिया में कहाँ खो गई हूँ। 25,000 दिलों की धड़कने और मेरे दिल की धड़कने कुछ इसी तरह हम आहंग हो चुकी हैं,
कि ढूंढे से नहीं मिलती। 50,000 आंखों में मेरी आंखें कौन सी हैं? मेरी इनफरादियत कहाँ है? मेरा शऊर लाशऊर, मेरी हयात, मेरी उलझने, परेशानियां और मेरे जाती दुख दर्द कहाँ हैं? मगर अपनी वसीयत पर खुद हैरान हूँ। ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी इनफरादियत कामगार मैदान में खचाखच भरी है। ये 25,000 दिल और 50,000 आंखें मेरी ही हैं। जरा और ऊपर आंख उठाऊं तो 25 लाख, 25 करोड़, नहीं, मुझे गिनती मालूम करने की जरूरत नहीं। इस तूफान में मैं भी एक कतरा हूँ और हर कतरा तूफान है।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।